खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं, पालूस रसूल कहता है कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, गुमराह ना करे, बरगश्ता ना करे, तुम्हें बुरी राह पर ना चलाए। इसलिए हम अपनी तरबियत और नसीहत के लिए, कल हमने देखा था कि बहुत दफ़ा जब मसीही मर जाते हैं तो फौतगी पर बहुत दफ़ा पैगाम लूका की इंजील उसके 16वें बाप की 19वीं आयत से दिया जाता है, अमीर और गरीब आदमी के बारे में, उस दौलतमंद शख्स के बारे में और गरीब लाज़र के बारे में। जब हम बाइबल मुकद्दस में उस जगह को देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम उसमें और ज़्यादा हवाला जात देखें कि पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में हमें और बहुत सी सच्चाइयाँ मिलती हैं जो ईमानदारों के बारे में सिखाती है कि उनकी पुख्तगी और उनका बकरा, उनकी मेरास क्या है। इसलिए हम अपने मुतालिया को मुसलसल जारी रखते हुए कि आज मसीहियों को वो कौन सी बातें हैं जो बेफायदा हैं, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है, वो कौन सी इंसानी रवायात हैं जो इंसान ने खुद दर्ज कर ली है खुदा के हजूर अपने आप को पसंदीदा ठहराने के लिए। इसलिए आज हम गौर करेंगे काफ़ी बातों पर, लेकिन मेरे साथ निकालें। पहला वाला हम पढ़ेंगे कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत से। आठवीं आयत से हम 15वीं आयत तक पढ़ेंगे और यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, जो बाइबल मुकद्दस रखते हैं वो निकालें, कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 2 बाब उसकी 8 आयत। और इस बाप में, इस कलीसिया में पालूस रसूल उन फिलासफरों से बात कर रहा है। फिलासफर उन लोगों को कहा जाता है जो किसी अकीदे को, किसी बात को और किसी ऐसी रस्म को अपनी ज़िंदगी में आला दर्जा या मकाम दे देते हैं और उसकी बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारते हैं। सो उन तमाम फिलासफरों को पालूस रसूल, जो कलीसिया में आकर मसीह के मुजस्सम होने को, मसीह के खुदा के बेटे होने को इनकार करते थे और कहते थे कि हाँ वो खुदा के बेटे के तौर पर पैदा हुआ है लेकिन हकीकी तौर पर वो बेटा नहीं है, वो खुदा के कौल के मुताबिक पैदा तो हुआ है लेकिन हकीकी तौर पर उसने निजात के काम को मुकम्मल नहीं किया, हकीकी तौर पर वो वसीला तो है लेकिन हकीकी तौर पर उसके साथ हमारी क्या कहते हैं निजात मुकम्मल नहीं होती। इसलिए इंसानी रवायात और सोचों और ख्यालों को वो क्या करते थे, ज़्यादा दर्जा देते थे। सो इन फिलासफरों से कलीसिया को पालूस रसूल कहता है खबरदार रहो, खबरदार रहो, यानी इस बात से वाकिफ हो, इस बात से तुम्हें वाकफियत होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। सो आठवीं आयत में पालूस कहता है खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फलासफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना के मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हकूमत और इख्तियार का सर है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्म, जिस्मानी बदन उतारा जाता है और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसे उसने मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामखतूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब गुनाह माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतायाबी का शादियाना बजाया। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से आज हम सब की रहनुमाई हो, आमीन। इन आयात में बहुत कुछ है, बहुत से बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, जैसे फिलासफी, जैसे अलूहियत, जैसे जिस्म का मुजस्म होना, जैसे मामूर होना, जैसे खतना, नामखतूनी, शादियाना बजाना, दस्तावेज और फतेयाबी का डंका बजाना। सो इनमें इस हिस्सा में बहुत से बड़े बड़े अल्फाज हमें मिलते हैं, लेकिन चाहता हूं कि आज चंद एक सच्चाइयों पर गौर करें। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। यहां पर पालूस रसूल उन फलासफों को जो फलासफी करते थे, जैसे लोहार क्या करता है, लोहे का काम करता है, वैसे उस दौर के जो फलासफर थे उनकी फलासफी क्या थी। पहली बात, वो खतने के बारे में उनको तालीम देते थे कि तुम ईमानदारों को खतना कराना ज़रूरी है, तब ही तुम्हारी निजात का पहला हिस्सा मुकम्मल होगा। दूसरी बात, वो कहते थे तुम्हारे गुनाह माफ़ नहीं हुए इसलिए क्योंकि तुम ना मखतून हो। खतना यानी जिसे आज के दौर में हम सुनते हैं, कहते हैं कि अपने बेटों की सुनते करवाना। उस दौर में जितने गैर यहूदी थे, क्योंकि यहूदियों में ये हुक्म था खुदा की तरफ से, मूसा ने दिया कि तुम आठवें दिन अपने पलौठे बेटे का या जो भी बेटे हों उनका क्या करना, खतना करना। हमारी जबान में उसे सुनता कहते हैं। सो ये लोग क्या करते थे, आकर ला हासिल फरेब से शिकार देते थे, इंसानी रस्मों को आला दर्जा देते थे और मिक्स मिला के क्या करते थे, मसीह के काम, उसकी सलीब, उसकी फतह को और उसकी अलूहियत का इनकार करते थे। आज के दौर में हमको ये बेफायदा बातें सुनने का मौका मिलता है कि हम जी हम सुनतों वाले हैं इसलिए हम पाक हैं। बाइबल मुकद्दस इसे क्या कहती है, मखतून। नामखतून उसे कहते हैं जिसका खतना ना हुआ हो, और खतना जिसका हुआ हो उसे क्या कहते हैं, मखतून। सो इन सब को पहली आयत को देखेंगे, आठवीं आयत को, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलासफी और ना और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना के मसीह के मुआफिक। बहुत सी ऐसी रवायात हैं जो हम इंसानों ने शुरू से चली आती हैं, कहीं ना कहीं से सीखी हैं, हमारे बाप दादा से। हम सब जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आए हैं, जब पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया तो आधे पाकिस्तान में रह गए और ज़्यादा हिंदुस्तान में चले गए। वो तमाम रीति रिवाज जो हमने हिंदुओं से और दूसरे अवाम से सीखे वो अपनी ज़िंदगी में अपना ले। वैसे ही उस दौर में भी यहूदी ईमानदारों ने कुछ ऐसी रीति रिवाज थे जो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों में पाए जाते थे, इसराइलियों में नहीं पाए जाते थे, अमालिकियों में पाए जाते थे, इसराइलियों में नहीं पाए जाते थे, मोआब के रहने वालों में पाए जाते थे, इसराइलियों में नहीं पाए जाते थे। सो उन इंसानी रस्मों को क्या लिखा है, जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातें हैं, दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना के मसीह के मुआफिक। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ हमें मिलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम कहता है कि मसीह के मुआफिक हैं, और बहुत सी ऐसी दर्ज की गई हैं ताकि हमें मालूम हो वो मसीह के मुताबिक नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे दौर में जब किसी के बेटी बेटा पैदा होता है तो उसे सलाह दी जाती है कि जी इसे इसके सराहने के नीचे छुरी रखो, इसके मंजे के साथ ताला लगाओ जी, इसके जी हिंग फकड़ की और बहुत सा दूसरा सामान बांधो। ये इंसानी रवायत है, बाइबल में हमें कहीं जिक्र नहीं मिलता। ये रवायात बहुत दफा जब ना कोई करता है तो अगर बेटी बेटा बीमार हो जाए तो उसे कहते हैं जी आप पर किसी साया का हमला हो गया है, किसी बदरू ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो हो गया। ऐसी रस्में, उसके साथ साथ और बहुत सी बातें हैं। आए इस हिस्सा पर गौर करें, ये फिलासफर क्या करते थे? यसु मसीह को यसु मसीह मानते थे लेकिन उसके काम को पूरा नहीं मानते थे। यानी कि ये कहना यसु मसीह हमें पता तेरी सलीब खाली है, तूने निजात का काम मुकम्मल कर दिया लेकिन थोड़ा सा काम रह गया है, उसे हम खुद कर लेंगे। सो पालूस रसूल इसीलिए कलीसिया को कहता है कि यसु मसीह कौन है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सारी मामूरी, अलूहियत, खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दस, सारी मामूरी क्या करती है? उसमें सुकूनत करती है। और तुम उसी से मामूर हो, उसी में मामूर हो गए हो। आजकल के दौर में एक और बात जिनको भाई कहते हैं, भाई मिशन, वो क्या करते हैं? ईमानदारों को आकर क्या कहते हैं? आप यीशु पर ईमान लाए हैं जी, आपको रूह कुद्दस नहीं मिला, आपको रूह कुद्दस नहीं मिला, इसलिए सबसे पहले आपको पानी का गोता लगाना होगा। वो क्यों जी? गोता लेंगे तो निजात होगी, ये क्या है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं। दूसरी बात, आप मामूर नहीं हुए, आपको दुआएं करने की जरूरत है, आपको कुछ जतन करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, अगर आप मामूर होना चाहते हैं तो आपको गैर जुबानें बोलनी होगी। अगर नहीं बोलनी आती तो हमारे पीछे पीछे कहेंगे बुरे वाला बुरे वाला बुरे वाला बुरे वाला बुरे वाला बुरे वाला। ये सच है हाँ जी, जब बुरे वाला सीख जाएंगे उसके बाद कबीर 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 लाहौर नहीं जानते। सो क्या हुआ है? उसी में तुम मामूर हो गए हो। सो जो भाई हैं, जिसे भाई मिशन कहा जाता है, उसे पेंटिकॉस्टल भी कहा जाता है, उनकी रीति रिवाज क्या है? पहली बात तो आपको पानी का बपतिस्मा लेना होगा, तब आपकी निजात होगी। वैसे ही जैसे ये फिलासफर कहते थे, तुम्हें खतना करवाना पड़ेगा फिर तुमको निजात मिलेगी, वरना तुम दोजख में जाओगे। पेंटिकॉस्टल कहते हैं कि जी आप पानी का बपतिस्मा लें, उसके बाद फिर जबाने बोलें, फिर अगर आप रूल कुद्दस से मामूर होंगे तो उसका निशान क्या है? नबूवत करेंगे। नबूवत, नबूवत यानी के वो बात जो अभी नहीं हुई उसका बयान करना, सादे लफ्जों में। अब मैंने आपको बताया था कि एक पादरी साहब किसी खानदान में गए और उनके घर में बिजली वाला झूला था और पादरी साहब ने वैसे तो नहीं मांगा, और एक दफ़ा विज़िट के लिए चले गए और फिर बाद में तीन महीने छः महीने बाद विज़िट के लिए गए तो वहाँ पर दुआ करना शुरू की और नबूवत के रूह से कहना शुरू कर दिया कि खुदा ने मुझे कहा है जो आपके घर में झूला है वो मुझे दे दो। तो खानदान ने सुनी इस नबूवत को, इस बात को सुना, और जब दुआ खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि पादरी साहब क्या वाकई ही खुदा ने आपसे कहा था कि जो झूला हमारे घर में आपको दे दें? जी ये खुदा की तरफ से है। उन्होंने कहा पादरी साहब या फिर आप गलत हैं या फिर आप हम गलत हैं। क्यों जी भाई जी, खुदा ने मुझे नबूवत की रूह से कहा है, मेरा बपतिस्मा हुआ है, मैं निजात याफ्ता हूँ, मैं रूह कुद्दस में जबाने बोलता हूँ, अब मुझे नबूवत की रूह हासिल है। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या खुदा ने ये नहीं बताया कि वो झूला हमने 3 महीने पहले ही बेच दिया था, झूठी नबूवत। सो ये फिलासफर क्या करते थे, झूठे बयान करते थे लोगों को जीतने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। इसीलिए पालूस कहता है कोई खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फिलासफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले, शिकार ना कर ले। इसलिए अगर आपके पास भी कोई आ जाए और कहे कि जी 4 घंटे की दुआ करेंगे तो फिर खुदा आपको उसी वक्त बेटा देगा, वो झूठा है। खुदा अपने निजाम के खिलाफ नहीं जाता। बेटा बेटी पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं, शरा के आगे कोई शर्म नहीं। ऐसे ही है जी, 9 महीने का निजाम खुदा ने किया है, ना के 12 महीने का और ना के 4 घंटे का। ये कुकड़ी का बच्चा नहीं कि बिजली वाले मशीन में डाला और बच्चा तैयार हो गया। सो ऐसे लोगों से खबरदार रहने की जरूरत है कि जो कहेंगे जी 4 घंटे दुआ करें और आप मुझे हदिया मेरी जोब में भर दें, आपको बच्चा मिल जाएगा, चलता फिरता काम करता, झूठे हैं, खबरदार रहें। और क्या लिखा है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। जिस दिन हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, खुदा का पाक रूह हम में आ जाता है। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है, पादरी फैसल की नहीं या बुरे वाला कबीर वाला उसकी नहीं। इन फिलासफों से हमें खबरदार रहने की जरूरत है, उन बेफायदा कामों से जिनसे कुछ हासिल नहीं, हमें उनसे बचे रहने की जरूरत है। 16वीं आयत को देखें, नहीं अगले हिस्सा में देखेंगे, हमारे पास वक्त थोड़ा है। सो खुदा यीशु मसीह का वो इकरार करते थे लेकिन उसकी उस फतह को कबूल नहीं करते थे। तो पालूस रसूल उनको कहता है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिसे जिस्म जिस्मानी बदन उतारा जाता है। हमारा खतना नए अहद के मसीही होते हुए, हमारे दिल का खतना खुदा चाहता है, हमारे जिस्म का खतना नहीं चाहता। और दूसरी बात, उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, हमारा रहानी बपतिस्मा यानी कि रूह कुद्दस का बपतिस्मा होता है जिस दिन हम यीशु को कबूल करते हैं। अगर कोई आपके पास आकर कहे कि जी आप यीशु पर ईमान रखते हैं, जी पानी का बपतिस्मा लिया है, नहीं, तो आप वो आपसे कहेगा कि आपकी निजात मुकम्मल नहीं। पानी का बपतिस्मा कभी भी निजात के लिए नहीं दिया जाता। पानी का बपतिस्मा शगिर्दियत के लिए है, जैसे मैंने बहुत से लोगों ने कहा जी हाँ जी हमें पानी का बपतिस्मा दें, मुकम्मल तौर पे खुदावंद मैं तेरी इबादत करूंगा, मेरा सर किसी और के आगे नहीं झुकेगा, मैं तेरी ही गवाही दूंगा, ना के 86 वाले की, ना के 34 वाले की, ना के माइकाल का की, ना के किसी और की। सो उसी के साथ तुम्हारा बपतिस्मा क्या हुआ है, हुआ बपतिस्मे में दफन हुए और उसी में खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसने मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। हमारी नई पैदाइश, नए तौर पर पैदा होना, पुरानी मौत पुरानी जिंदगी में से निकल कर नई जिंदगी में आना। और पालूस रसूल क्या कहता है, 13वीं आयत, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया। नामख्तूनी के सबब से, यानी कि अगर तुम्हारा खतना नहीं भी हुआ था जिस्मानी तौर पर, उसने तुम्हें क्या किया है, तुम्हारे कसूर माफ करके जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। ये लोग आएंगे और कहेंगे जी आपके गुनाह अभी 73 माफ हुए हैं, अभी 13 बाकी हैं, उन 13 के लिए आप मुझे एक बकरा दे दें, 13 के लिए आप मुझे 2 देसी कुकड़ियां ले दें जो अंडे देती हों। सो खबरदार रहें। और क्या लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। यीशु मसीह ने जब सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा दिया तो 99 गुनाह माफ नहीं किए, सब गुनाह माफ किए। वो दस्तावेज, दस्तावेज यानी कि वो बड़ी किताब जिसमें लिखा हुआ था फैसल वर्ल्ड सैमुअल गुना 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 गुनागार जोसेफ का फर्जंद 2003 2002 फलाना महीना यीशु मसीह को कबूल किया, गुनाहों की किताब बंद कर दी और कहा कि ये खुदावन्द यीशु मसीह में मेरा फर्जंद है। इसी तरह आप सबके साथ हुआ। और क्या लिखा है, दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कमर मसीह, हालेलुया, खुदावन का बेटा और बेटी, अब से गुनाहगार नहीं, अब से गुलाम नहीं, अब से क्या है, मेरे फर्जंद, मेरी बेटी, मेरे बेटे। इतनी ज्यादा कुव्वत और इज्जत और शोहरत हमें यीशु मसीह से मिली है, फिर क्यों हम झूठे अल्फाजों से इंसानों का ज्यादा यकीन करते हैं बजाय उस यीशु मसीह के जो हम सब के लिए कुर्बान हुआ। क्या लिखा है, दस्तावेज अपने सामने से हटा दी। और 15वीं आयत, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरलमा तमाशा बनाया। कभी बांदर और कुत्ते का तमाशा देखा है? उसने उन तमाम कामों का, उन तमाम फिलासफरों का, उन तमाम झूठों का, अबलीस के हर एक फ्रेब का क्या किया, तमाशा बना दिया। किस तरह, सलीब के सबब से उन पर फतायाबी का शादियाना बजा के, फतह का, जैसे फौज में, रूमी फौज में जब फतह होती थी तो बड़ा बाजा बजाया है, पा पा पाम, पता चल जाता था कि फतह हो गई। आज हमारी जब खुशी होती है तो हम खुशी में ढोल बजाते हैं, बाजे बजाते हैं। सो यीशु मसीह ने रूहानी तौर पर फतह का शादियाना बजाया, ऐलान किया कि निजात का काम मुकम्मल हुआ, अब कोई भी जो मेरे हैं उनसे मुझे कोई छीन नहीं सकता और ना ही कोई उनको मुझसे दूर कर सकता है। इसलिए खबरदार रहें कि कोई तुमको इंसानी रवायत और फलासफी और झूठ फरेब से गुमराह ना करे। क्या लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलासफी और ला हासल फरेब से, ला हासल से मुराद यानी कि बेफायदा, जिससे कुछ हासिल नहीं, जिससे कुछ फायदा नहीं, जिससे कुछ नफा नहीं, इसलिए कोई दूसरे लफ्जों में तुम्हें तुम्हारे दौड़ के इनाम से महरूम ना करे। जब हम खुदावन की हजूरी में पहुंचे तो ये ना कहें कि मैंने सब कुछ किया, खुदावन यीशु मसीह के लिए सब कुछ करता रहा, करती रही, लेकिन यहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं। इसलिए अबलीस को मौका ना दे के वो आपका ताज आपसे छीने। और यहां पर लिखा है 18वीं आयत के, जब हम दूसरे हिस्सा को देखते, 18वीं आयत को देखते हैं, कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे। ऐसे शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहते हैं। कोई तुमको बेफायदा बातों से गुमराह ना करे। आए हम दुआ करें।